नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह यीशु पर विश्वास करना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमने उसका समापन भी किया, और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन आरम्भ करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक की आत्मिक आँखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को खोल दें ताकि जब हम आपके वचन का अध्ययन करें तो आपका जीवित वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। इस समय हमें से प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यह एक आम धारणा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार को समझना आसान अर्थात सरल है। प्रायः यह सुनने में आता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार आसान है। ऐसा वे लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इसकी भाषा सरल है, क्योंकि इसमें सरल शब्द हैं, जैसे अध्याय 1 पद 11 और 12 में लिखा है, वह अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ शब्दों के साथ हमें कोई भी समस्या नहीं है, परंतु सत्य तो यह है कि उनका अर्थ बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 20 पद में देखें, तुम मुझ में और मैं तुम में। यहाँ 7 शब्द हैं, जिनमें एक संयोजक शब्द है, 2 संबंध सूचक शब्द और 4 सर्वनाम है। यदि आप किसी प्राथमिक स्कूल के बच्चे से पूछे तो वह भी इन शब्दों की परिभाषा सुना देगा, परंतु इन 7 शब्दों को साथ रखकर वाक्य पढ़ें तो पहले इसकी व्याख्या करना धर्म विज्ञान के विशेषज्ञ या किसी दार्शनिक के वश में भी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम मुझ में की व्याख्या है हमारा उद्धार और मैं तुम में की व्याख्या है हमारा अभिषेक। इससे अधिक समझ पाना हमारे लिए कठिन है। हम प्रायः यह सोचते हैं कि हम शब्दों का अर्थ समझ गए हैं, परंतु उनका सही अर्थ समझना हमारे लिए कठिन होता है, जो बहुत ही गहरा है। मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में प्रसिद्ध टीकाकार जेरोम ने कहा, यूहन्ना ईश्वरीय भेदों के संबंध में सबसे ऊपर है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर A.T. वियर्सन ने कहा, यह मसीह के मन को छूता है। मित्रों, यह तो हम मान लेते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार सरल है, परंतु यह नहीं मानते कि यूहन्ना इसका लेखक है। जर्मनी के एक बाइबल स्कूल बार्तु विनजन ने सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार की आलोचना आरंभ की और यह स्वतंत्र विचार के धर्म विज्ञानियों का कार्य क्षेत्र बन गया। मेरे शास्त्रों के अध्ययन के काल में यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक एक विषय था। मेरे प्राध्यापक ने अंत में यही कहा कि यूहन्ना ही इस वृतांत का लेखक है। मेरी कक्षा में एक शिक्षार्थी ने कहा, अध्ययन से पूर्व मैं यूहन्ना को ही इसका लेखक मानता था और अब अध्ययन के पश्चात भी उसी को इसका लेखक मानता हूँ। मेरा तो एक अध्ययन सत्र व्यर्थ गया। मित्रों, हम इस विषय पर विवाद करके समय नहीं गंवाएंगे, परंतु मैं 2 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो सिद्ध करती हैं कि यूहन्ना ही इस सुसमाचार का लेखक है। पहली, पपायस के बाइबल का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है और यह माना जाता है कि पपायस ने कहीं नहीं लिखा कि यूहन्ना इसका लेखक है, परंतु प्राध्यापक जो एक जर्मन विद्वान है, उन्होंने सेंट कैथरीन मठ के पुस्तकालय में अध्ययन करते समय सेनोप्टिक के मूल लेख में पपायस का उद्धरण देखा, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि यूहन्ना ही यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक है। और दूसरा है, सिकंदरिया के क्लेमेंट, जो सन 200 की शताब्दी में वास करते थे, लिखते हैं कि यूहन्ना के मित्रों ने और पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि यीशु के सुसमाचार का वृतांत लिखें। मेरे विचार में यही वह वृतांत है। मित्रों, एक प्रश्न जो इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है, यूहन्ना ने सुसमाचार क्यों लिखा। यह अंतिम सुसमाचार है जो लगभग सन 100 में लिखा गया। सब प्रेरित मर चुके थे, केवल यूहन्ना ही इस समय जीवित था। इस प्रश्न के उत्तर में भी अनेक अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना है कि यूहन्ना ने कलीसिया में प्रवेश कर गई ज्ञानवाद झूठी शिक्षा का खंडन करने के लिए यह सुसमाचार लिखा था। ज्ञानवादियों का मानना था कि यीशु परमेश्वर तो था, परंतु मनुष्य नहीं था। शिष्यों को यह भ्रम हुआ कि उन्होंने उसे देखा, जबकि वास्तव में ऐसा था ही नहीं। अरेनियस के अनुसार यूहन्ना ने ज्ञानवादी सेरेंथिस की शिक्षाओं का खंडन करने के लिए यह सुसमाचार लिखा था, परंतु थोलक का कहना है कि यह सुसमाचार खंडात्मक शैली का नहीं है। कुछ का मानना यह भी है कि यह सुसमाचार अन्य सुसमाचारों का एक प्रकार से परिशिष्ट है, अर्थात यूहन्ना ने कुछ अतिरिक्त बातें लिखी है। परंतु हेज कहता है यह सुसमाचार अन्य सुसमाचारों में पैबंद नहीं लगाता कि खाली स्थानों की पूर्ति करे। मित्रों, इन धारणाओं में ऐसा कुछ नहीं है कि इस सुसमाचार के तथ्यों के आधार पर अपना मत प्रकट करें। मेरे विचार में कलीसिया के पास मत्ती, मरकुस और लुका द्वारा लिखे सुसमाचार थे और उन्होंने यूहन्ना से निवेदन किया कि वह उनकी उन्नति के लिए आत्मिक गहराइयों को व्यक्त करते हुए सुसमाचार लिखे। महान संत अगस्तीन ने भी यही कहा था। मित्रों, चारों सुसमाचार या सुसमाचार के चारों वृत्तांतों में यूहन्ना का सुसमाचार उकाब की तुलना योग्य है, जो उनसे ऊंचा और परिपूर्ण है। अपनी घोषणा और विलक्षणता द्वारा उसने यही मनोकामना की कि हमारे मन भी ऊपर उठें। जार की टू द गॉस्पल पृष्ठ संख्या 285-86 में इसे पाते हैं। मित्रों, सुसमाचार लिखने में यूहन्ना का यही उद्देश्य था। यही कारण है कि यूहन्ना हमें बेतलहम का दृश्य नहीं दिखाता है। वह चाहता है कि हम आत्मिकता में बढ़ें, और यही कारण है कि वह हमें समय के असीम परिधि में ले जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था। मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 3 अरब वर्ष पूर्व हुई, परंतु मेरे विचार में उससे भी बहुत पहले हुई है। नहीं तो आप क्या सोचते होंगे कि परमेश्वर आदि काल में कुछ कर रहा था? अतः जब आप यूहन्ना के शब्दों में पढ़ते हैं आदि में, तो आपको उतना ही पीछे जाना पड़ेगा जितना आपका मस्तिष्क सोच भी नहीं सकता। इसी आदि में वचन अर्थात प्रभु यीशु था और वही परमेश्वर था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में हम इसे पाते हैं। फिर अरबों वर्ष बाद आता है यूहन्ना 1 अध्याय का 3 पद, उसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। अपने से रचित वस्तु कुछ भी नहीं थी जो उसने न रची हो। यूहन्ना अध्याय 1 उसके पद 14 में कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य वास किया। यूनानी दार्शनिक जिनके लिए लुका ने सुसमाचार लिखा, यहाँ आकर आपको रोक देंगे और कहेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु यूहन्ना उनके लिए नहीं लिख रहा था, वह आगे कहता है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रकट करने का अर्थ है उसे सामने लाया, जहां मनुष्य उसे पहचाने और उसके पास आए। मित्रों, इस प्रकार से प्रभु यीशु का आरंभ नहीं है, वह अनादि काल से निकल कर आता है। लुका एक वैद्य अर्थात डॉक्टर था, अतः उसका सर्वेक्षण वैज्ञानिक स्तर पर था, परंतु यूहन्ना भिन्न रूप से व्यक्त करता है, फिर भी निष्कर्ष दोनों का एक ही है। मित्रों, एक विश्वासी जब यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ता है, तब उसे विश्वास का असीम आनंद एवं हर्ष प्राप्त होता है। यह विश्वासी की विश्वास में उन्नति प्रदान करता है। मेरा एक मित्र डॉक्टर है, वह मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को बाइबल अध्ययन के लिए एकत्र करता था। क्या आप जानते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा? मैंने उन लड़कों को यूहन्ना अध्याय 1 के अध्ययन से हिलाकर रख दिया। बहुत दिन बीत गए और उससे फिर मिला। मैंने पूछा कि उनका बाइबल अध्ययन कैसा चल रहा है। उसने कहा, ओह, लड़कों ने आना छोड़ दिया। वे ऐसे कॉलेज में थे जहां आप सब कुछ आंखों के सामने दिखा एवं पढ़ा जाता था। मैंने उनसे कहा, आपने लुका रचित सुसमाचार से अध्ययन क्यों नहीं आरंभ किया? उसने कहा, मैं उन्हें एक सरल सुसमाचार का अध्ययन करवाना चाहता था। वह असफल रहा क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार सरल नहीं है, यह बहुत गहरा है और यह विश्वासियों के लिए है, विशेष करके अध्याय 13-17। आप उस पर लिख सकते हैं, केवल विश्वासियों के लिए। आप इसके नीचे यह भी लिख सकते हैं, अन्य सब लोगों के लिए नहीं। मेरे विचार में सुसमाचार का यह भाग अविश्वासियों के लिए नहीं था। यीशु अपने शिष्यों को अलग कमरे में ले गया और उन्हें भेद की बातें समझाई, जिससे उनकी आत्मिक उन्नति हो। मित्रों, अन्य कोई सुसमाचार का लेखक ये बातें नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि वे मसीह को संसार का उद्धारकर्ता दर्शा रहे थे। तो क्या यूहन्ना उसे उद्धारकर्ता नहीं दर्शाता है? निसंदेह वह मसीह को उद्धारकर्ता दर्शाता है, परंतु उसका उद्देश्य विश्वासियों को आत्मिक उन्नति प्रदान करना है। यूहन्ना अन्य सुसमाचारों की तुलना में वरन तीनों को एक साथ रखने पर भी यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु का पुनरुत्थान अधिक दिखाया गया है। पौलुस लिखता है कि हमने मसीह को देह रूप में जाना है, परंतु अब हम उसे वैसा नहीं, उसे मृतकों में से जी उठा मानते हैं। यही कारण है कि यूहन्ना 7 से अधिक बार उसका प्रगटीकरण दिखाता है, जिसमें पहला है मरियम मगदलिनी की वाटिका में दर्शन, दूसरा ऊपरी कक्ष में शिष्यों को दर्शन, तीसरा है शिष्यों को दर्शन जब थोमा भी उनके साथ में था। ये तीन दर्शन अध्याय 20 में व्यक्त हैं। चौथा हम यूहन्ना 21 अध्याय के 5 में पाते हैं, जब शिष्य गलील सागर में मछली पकड़ रहे थे, तब वहां प्रकट हुआ। उसने उनसे पूछा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? वह एक दिन हमसे भी यही पूछेगा, क्या तुमने कुछ मछलियां पकड़ी हैं? आपको उसके निर्देशों के अनुसार ही मछली पकड़ना होगा। उसने उनके लिए नाश्ता भी तैयार किया। काश मैं भी वहां पर होता। मेरे मित्रों, वह आज भी आपको नाश्ता कराना चाहता है, जो आत्मिक भोजन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 15 से 17 में वह पत्रस से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने यह नहीं पूछा, तूने क्या सेमिनरी में पढ़ाई की है? एकमात्र योग्यता, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि आप यीशु से प्रेम करेंगे तो अपने आप सेमिनरी जाना चाहेंगे। मित्रों, आज सच्चे सेवकों की कमी का मुख्य कारण यही है कि मनुष्य उससे प्रेम नहीं करता है। पत्रस से कहा गया था कि उसे यीशु के नाम के कारण शहीद होना पड़ेगा, परंतु यूहन्ना से नहीं कहा गया, क्योंकि उसे सुसमाचार वृतांत, तीन पत्रियां और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें लिखनी थी। यूहन्ना यीशु के 7 दर्शनों का उल्लेख करता है जो विश्वासियों के लिए लिखे गए हैं। मित्रों, यीशु के जन्म पर अन्य जातियों में बड़ी आशा जागी थी। यह बड़ी विचित्र बात है कि उस समय संपूर्ण संसार में मसीह के आने की आशा थी। पूर्व से ही ज्योतिषी मसीह का दर्शन करने आए थे। उन्होंने पूछा कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय और 2 पद में पाते हैं। मित्रों, इस सुसमाचार की विशेषता यह है कि एक ओर तो यह विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए है, तो दूसरी ओर यह पूर्व के लोगों के लिए भी है। पूर्वी लोगों से मेरा अभिप्राय है मिस्रवासी, बेबीलोन वासी, फारसी, भारतीय तथा चीनी और तिब्बत, यहाँ तक कि मंगोल देश के बारे में भी कहें। मित्रों, वह क्षेत्र आज भी रहस्य का विषय है। वहां बहुत धन तो है, परंतु गरीबी भी बहुत है। यहीं से ज्योतिषी आए थे। उन्होंने यीशु को भेंट अर्पित की थी, सोना, मूर और लोबान। पूर्वी देश अत्यधिक धनवान देश थे और यही कारण था कि कोलंबस वहां की खोज में निकल पड़ा और भूल से अमेरिका जा पहुंचा। इतना सब होने के बाद भी आज वहां गरीबी का प्रकोप है। अग्रिम 20 वर्षों में 10 करोड़ लोग भूख से मरेंगे। अब आप पूछेंगे, उनके लिए कोई भोजन क्यों नहीं भेजता है? हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है कि उन्हें भेजें। भूखमरी दोनों ओर है, एक ओर भोजन की कमी तो दूसरी ओर धनवानों की जीवन की समस्याओं के समाधान की कमी। वहां अनेक महान धर्म हुए, बुद्ध, शिंतो, कन्फ्यूशियस का धर्म, इस्लाम, हिंदू आदि, तो भी उनके ज्योतिषी यहूदियों के राजा को खोजने आए और उसका दर्शन करने आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उद्धार चाहिए था। किसी के पास में उद्धार का मार्ग नहीं था और यही कारण था कि वे यूहन्ना के सुसमाचार से हर्षित थे। यूहन्ना का सुसमाचार इन लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रभु यीशु को प्रस्तुत करता है और वचन देहधारी हुआ। वह स्वर्ग की महिमा का त्याग करके आया। वह हमारी कल्पना से परे अनादिकाल से है। यूहन्ना के अनुसार यीशु का पहला सार्वजनिक काम मंदिर का शोधन या पवित्रीकरण था। दुष्टता या अनुचित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक रात एक धर्मगुरु यीशु के पास आया। केवल यूहन्ना ही यह घटना लिखता है। प्रचलित धार्मिकता के अनुसार वह ऊंचाइयों पर था। यीशु ने उससे कहा, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय और 3 पद में पाते हैं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मित्रों, उसे पुराने धर्म का त्याग करके नई जीवन शैली में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। यीशु ने स्पष्ट किया कि वह पुराने वस्त्र में पैबंद या पेंच लगाने नहीं आया था। वह उन्हें धार्मिकता का वस्त्र पहनाने आया था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने योग्य बनाता है। इस संसार को इसी की आवश्यकता थी। पूर्व में स्त्रियों का स्तर गिरा हुआ था। यीशु ने स्त्रियों को प्रतिष्ठा प्रदान की, क्योंकि वह एक स्त्री से जन्मा था। यीशु ने विवाह भोज में जाकर उन्हें आशीष दी। कुएं पर यीशु ने एक दुराचारी स्त्री से बातें भी की थी। उसकी मृत्यु ऐसे ही लोगों के लिए थी। मित्रों, उसके लिए स्त्री का मान भी उतना ही था जितना पुरुष का। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। उसने विशाल जनसमूह को चमत्कारी रूप से भोजन कराया और वहां से चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मनुष्य पेट के कारण उसे श्रद्धा अर्पित करे। आज जिनके पास खाने को भोजन है, वे यीशु को जीवन की रोटी नहीं मानते हैं। मित्रों, इस सुसमाचार में यीशु अपने को जीवन की रोटी ही नहीं, जगत की ज्योति, मार्ग, जीवन और सच्चाई भी कहता है। पूर्वी दुनिया उस समय विनाश के कागार पर थी, जैसे आज है। उनके लिए यूहन्ना का संदेश था और आज भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम पाते हैं, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे मित्रों, आज संपूर्ण विश्व को इसी की आवश्यकता है, किसी धर्म की नहीं। हमारे इस अध्ययन से पूर्व मैं आपका ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मत्ती, मरकुस और लुका के सुसमाचार, जिसे सिनोप्टिक सुसमाचार कहते हैं, क्योंकि वे एक ही दृष्टिकोण से लिखे गए थे, परंतु यूहन्ना का सुसमाचार भिन्न है। पहला है मत्ती और मरकुस यीशु के आश्चर्यकर्मों पर अधिक ध्यान देते हैं, लुका यीशु के दृष्टांतों पर ध्यान देता है, परंतु यूहन्ना ऐसा कुछ भी नहीं करता। और दूसरी बात है, यूहन्ना यीशु के चमत्कारों को चिन्ह स्वरूप व्यक्त करता है और उन्हीं चमत्कारों का उल्लेख करता है जो किसी महान सत्य को उजागर करते हैं, जैसे जीवन की रोटी। जीवन की रोटी पर उपदेश के बाद जनसमूह को भोजन कराना, यूहन्ना के सुसमाचार में 11 विशेष चिन्ह दिए गए हैं। और अब हम तीसरी बात देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में दृष्टांत नहीं दिए गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 6 में दृष्टांत शब्द आया है, परंतु उसका मूल अर्थ उपदेश है। अच्छे चरवाहे की कथा दृष्टांत नहीं है। मेरे मित्रों, यूहन्ना का वृतांत समय के क्रम में है। यदि इसे आप ठीक से समझें तो आप यीशु के 3 वर्षीय जीवन को आसानी से समझ लेंगे। जैसे पहला अध्याय उसके 29 में वह लिखता है, दूसरे दिन, और पद 35 में फिर दूसरे दिन। वह तर्क सम्मत ही नहीं है, वरन क्रमवार भी है। वह स्थानों एवं नगरों पर भी विशेष ध्यान देता है, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 28 पद में यर्दन पार बैतनिया में, और दूसरे अध्याय के 1 पद में गलील के काना में। मित्रों, इस सुसमाचार में यीशु का ईश्वरत्व सबसे आगे रखा गया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यूहन्ना यीशु के मनुष्यत्व को अनदेखा करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि यीशु का सामरिया से होकर जाना और कुएं पर बैठना केवल यूहन्ना ही व्यक्त करता है। वह थक गया था, अर्थात वह पूर्ण मनुष्य था। इससे अधिक मनुष्य होने का प्रमाण और क्या हो सकता है? केवल यूहन्ना ही हमें बताता है कि यीशु रोया। मित्रों, यहाँ एक विचित्र बात देखने को मिलती है कि यूहन्ना यीशु के ईश्वरत्व पर बल देता है, परंतु वह मसीह की अपेक्षा यीशु शब्द का उपयोग करता है। ऐसा क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि वह दिखाना चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य बना। इस सुसमाचार में एक महान अवागमन है, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 28 पद में पाते हैं, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। मित्रों, परमेश्वर मनुष्य बना, यह एक अत्यधिक दीनता का काम है। वह परमेश्वर होकर भी इस पापी जगत में हमारे पापों के लिए मनुष्य बना, ताकि हमें पाप से मुक्ति दिलाए। और इस बात को यूहन्ना ने हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में बताया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, जो उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार अर्थात मुक्ति पाएगा। मित्रों, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आप इस पर अवश्य विचार करें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, लेकिन अधिक जानकारी व आत्मिक उन्नति के लिए आप अगला कार्यक्रम सुनना न भूलें। प्रभु आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कमजोरी से भग न जाऊं।